अब सवाल पैदा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ तो समझ आ गई ना, जिम्मेदारी लो, इस्तकामत लो। दूसरी, प्रेशर बढ़ा है। आप इमेजिनेशन में लाएं, जो बात आप कह रहे हैं सारा मुआशरा उसको गलत समझता है और हर तरफ से मुखालफतें। एक तक अब जब आप बात करके घर जाते हैं, आप कहते हैं मैंने कह क्या दिया है, गलती ना कर दी हो। तो अगली आयत में इस्तकामत लेने का नुस्खा कि लोगों की बातों से जब दिल टूटे, रास्ता बदलने को दिल करे, कोर्स छोड़ने को दिल करे, ये जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती तो क्या करो, वाकी में सलात तरफ़ीन नहारी व जुल्फ़ मिन अल्लैल। फिर है नबी, नमाज को कायम रखिए दिन के दोनों सिरों पर और रात की कुछ घड़ियों में। बात समझे? वस्तईन बिस सब्री वसलाह। और आपको पता है कि सूरह बकरा में यह दो दफ़ा आई थी और किस मुकाम पे आई थी, किसी को याद है? पहले पारे में यह आयत कहाँ आई थी? दीन के ऊपर जमने पे। क्या पता चला कि नमाज बंदे के दिल को जमाती। जब किसी की बात से दिल टूटे, किसी रिश्तेदार का ताना, किसी घर वाले का इल्ज़ाम, किसी की पाबंदी, तो खड़े हो जाइए, जाए नमाज पे। और दोनों सिरे मुराद फजर और असर दिन के हैं और रात में मग़रिब और ईशा। याद रखिए कि पांच नमाजों का जो इस वक्त का निज़ाम हम देख रहे हैं ना, ये 1190 में मेराज के मौके पे कायम हुआ था। जब मेराज पे नमाज फ़र्ज़ हुई तो उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए दो मुख्तलिफ दिनों में। पहले दिन में नमाजों के इब्तदाई वक्त में नमाज पढ़ाई और अगले दिन में इंतहाई वक्त में, और फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के लिए नमाजों के वक्त इनके बीच में। पहले जो मक्की दौर था तकरीबन 10.5 साल, उसमें इसी किस्म के हुक्म थे जैसा ये है। कभी इधर की बात उधर, यानी एक पूरा हिस्सा नहीं था बस रखा। फिर दूसरी बात देखिए, वाहिद का सीगा है, गोया कैसे लग रहा है कि अल्लाह के नबी को सिर्फ ये हुक्म दिया गया, लेकिन आपके ज़रिए से उम्मत को सिखाया गया। क्यों पढ़ो नमाज? इसलिए कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, यकीनन नेकियां बदियों को दूर कर देती हैं। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये याद दहानी है याद रखने वालों के लिए। नमाज़ें इसलिए पढ़ो कि दोनों नमाजों के बीच के गुनाह माफ़ हो जाएं। नमाज़ें इसलिए पढ़ो कि दिल के ग्रज, कीने, हसद दूर हो जाएं। फितरत का असूल है कि चीज़ गंदी होती है ना तो साफ कपड़ा फेर दें, पानी डाल दें तो चीज़ साफ़ हो जाती है। हमारे दिल भी गंदे होते रहते हैं, हमारे नामे माल गंदे होते हैं। ये नमाज़ें इतने खूबसूरत तरीके से हमारी ज़िंदगी में सफाई करती हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं। फिर का वसबिर, पहला क्या था? फस्तकीम कमा उमिरता। फिर क्या था? वला ततगौ। हाँ, फिर क्या आ गया? अकीमिस्सला। और अब आ गया वसबिर। फ़इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, और सब्र कीजिए, यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। क्या पता चला? जब भी दावत हक के तकाजे आएंगे, जब भी ज़िंदगी के अंदर इस किस्म की आंधियाँ चलेंगी, कैसे लगे कि आपके कदम उखड़ेंगे, तो नमाज और सब्र। फिर आगे देखिए, इसी काम की कंटिन्यूशन है, मैं खुलासा कर दूंगी लेकिन आयतों को पहले समझिए। फ़लौल कान मिन अल-क़ुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़ीयतिन यनहौना अनिल फसाद फिल अर्दी, तो क्यों ना ऐसा हुआ कि तुमसे पहले की कौमों में हक के ऐसे लम्बरदार होते जो अपनी अपनी कौमों के लोगों को रोकते ज़मीन में फसाद मचाने से। ये आपको मुझे कहा जा रहा है, उठो। दुनिया में जो लोग फसाद मचा रहे हैं, जो अल्लाह की नाफरमानियाँ करते कराते हैं, इंसानियत को वहशियत और बर्बरियत पिला रहे हैं, जो जानवरों की सतह तक गिरने वाले काम करा रहे हैं, तुम मना करो उनको। हाँ, नहीं निकले ज़्यादा मगर इल्ला कलीलम, मगर थोड़े से। कितने थे नूह के साथ? 60-70। क्या पता चला कि इस्लाह का काम करने वाले हमेशा थोड़े होते हैं। फिर हुआ क्या? मेमन जैना मिनहुम, जिन्हें हमने इनमें से बचा लिया। याद रखिए, कुरान में ये बात बार बार आएगी, हक के अलम्बरदार बनो, झंडा उठाओ हक का, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का हक अदा करो, जहाँ भी हो, जिस कौम से भी हो, अल्लाह उनको ज़रूर बचाएगा। वादा है अल्लाह का। आप कहें अल्लाह मैं तेरे नाम के लिए इधर खड़ी हूँ, मैंने इस स्कूल से अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना है, मैंने इस स्कूल में तबलीग करनी है, अल्लाह आपकी वहाँ से मदद करेगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये अल्लाह का वादा है। وَتَّبَلَّسِينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ। अब तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लीजिए। ये तो इस्तकामत वालों और हक के लिए स्ट्रगल करने वालों की बातें थी, रह गए वो लोग जो पीछे रह गए। वो कौन है? और पीछे पड़े रहे वो ज़ालिम, इन ऐश और आराम की चीज़ों के, जो इन्हें दे दी गई थी और वो मुजरिम थे। ये वही बात है जो भी मैंने कड़वे से अंदाज में बोली थी। कलमाए हक की बुलंदी से पीछे रहना और ऐशो आराम की चीज़ों में पड़े रहना इन आयतों की रोशनी में जुर्म है। वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्म, और आपका रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को जुल्म के साथ हलाक करे। वाहलुहा मुस्लिहून, जबकि इनमें बसने वाले लोग इस्लाह करने वाले हों। कितनी प्यारी बात है, आप इस मुस्लिह बनकर किसी बस्ती में बैठे रहे, कह लीजिए कि आप उस बस्ती के अजाब को रोकने वाली चीज़ है, प्रिवेंशन है। जैसे आप रेनकोट पहनते हैं ना बारिश का पानी ना पहुंचे कपड़ों पे, इस तरह वो लोग जो किसी सोसाइटी में इस्लाह की कोशिशें कर रहे हैं वो अल्लाह के अजाबों को रोकने वाले होते हैं। अल्लाह हमें इसी लोगों में शामिल करते। वलव शाह रब्बुका लजअलन्नास उम्मतन वाहिदा, और अगर आपका रब चाहता तो तमाम नौ इंसानी को एक ही उम्मत बना देता। वला यजालून मुख्तलिफीन, लेकिन वो तो इख्तलाफ ही करते रहेंगे। क्या पता चला, ये लिख लीजिए, दीन के काम हो रहे हों चाहे, दीन के काम है या दुनिया के, एक असूल लिख ले, जहाँ कहीं भी लोग इकट्ठे मिलकर मिलजुल कर कोई काम कर रहे होंगे, इख्तलाफ राय का होना फितरी बात है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सोच होती है, हर एक का अपना नुक्ता नज़र होता है, हर एक का अपना इस्तदलाल होता है। वो कहते हैं ना, आगे पढ़ेंगे हम सूरह बनी इसराइल की आयत आएगी, कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही, हर एक की एक अपनी शाकिल है। जैसे मेरी आपकी शक्ल फ़र्क है ना, तो तरीका भी फ़र्क है, सोच भी फ़र्क है, प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है, हर एक के नज़रियात फ़र्क होते हैं, आमाल और अफ़ाल फ़र्क होते हैं। तो इस्लाम आपको तरीका सिखा रहा है, मुख्तलिफ चीज़ों को साथ लेकर चलो, कोई बुरी बात नहीं है। इख्तलाफ ख़त्म हो सकता ही नहीं है, फिर तो सारे गूंगे बहरे हैं सोसाइटी में, ना अच्छे में रोके ना बुरे में टोके। शर्त एक है, इस इख्तलाफ को मुखालफत में ना बदलने दो। एक जुमला लिखिए, जेम बना दे, इख्तलाफ हकीकत है, बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन जब ये मुखालफत में बदलता है तो फिर तफरकाबाजी और फिरकेबाजी शुरू होती है, ये नहीं करना। वो कहते हैं ना अरबी में कि मन दी गरम तू दी गरी, ये ना हो। हर एक अपने आप को सच्चा समझे, दूसरे को बुरा के, थोड़ा सा समझिए। आप देखिए कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला, हम उनसे कितना प्यार करते हैं, इमाम शाफी रहमहुल्ला, दोनों आइमा कराम थे ना, दोनों ने कुरान और सुन्नत से दलीलें ली ना, लेकिन कुछ मामलात में दोनों बुजुर्गों की राय में बहुत फर्क है। लेकिन याद रखिए, जब तक ये दुनिया में थे, ऐसे अहले इल्म लोगों के हाँ इख्तलाफ कभी मुखालफत में नहीं बदला, निज़ाम में नहीं बदला, तफरकेबाजी में नहीं बदला। बाद वालों ने पकड़ कर रखा, वही तीसरे पारे के शुरू किए आए थे, तिल का रसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, उसमें ये बात हुई थी। तो ये दुनिया का हुस्न है, एक दूसरे जाविये से देखे तो दुनिया की रौनक और खूबसूरती क्या है, कलरफुल है। काली होती सारी दुनिया कैसी लगती, गोरी होती कैसी लगती। अगर दुनिया में यकसानियत होती तो इंसान थक जाता। हाँ मगर इल्ला मर रहमा रब्बुक, सिवाय इसके जिस पर आपका रब रहम फरमा दे, वली ज़ालिक खलकहुम, और इसी के लिए इनको पैदा किया। क्या पता चला, अल्लाह ने इंसानों की तख्लीक के अंदर यह इख्तलाफ और तनव्वो खुद रखा। यह आपका हाथ इसकी दलील है, पांच उंगलियां बराबर नहीं है। कई दफ़ा आपने सुना बोला ये जुमला, अरबों इंसान है दुनिया में, दो इंसानों के मिजाज, शक्लो सूरत, आवाज़, उंगलियों के ये प्रिंट्स, फिंगर प्रिंट्स जिसको आप कहते, नहीं मिलते। अल्लाह ने पैदा किया, आपके पाँचों बच्चे एक जैसे होते तो एक कोई दो दफ़ा खिला देती, दूसरा भूखा रह जाता, ऐसे ही होता ना। नहीं, अल्लाह ने खुद रखा। हदीस में आता है कि इंसान कान की तरह है, कान क्या होती हैं, ये कान नहीं, काने मादनियात, माद, फरमाए जैसे मादनियात में से मुख्तलिफ चीज़ें निकलती हैं ना, ऐसी हर बंदे की मुख्तलिफ खूबी है। कोई अबू बकर है तो कोई उमर है, कोई उस्मान है तो कोई अली है, किसी में बहादुरी है, किसी में हया है, किसी में तहम्मुल है, किसी में जुर्रत है। व तम्मत कलिमतु रब्बिक, और आपके रब की बात पूरी होकर रहेगी। क्या लामलान्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमाइन, कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। मुशरिक, सरकश, नाफरमान, गुनाहगार सब जिन्नों इंस को इकट्ठा करेंगे, जहन्नम का ईंधन बनाएगा और उनको भर देगा। और उसने जन्नत भी बनाई है, उसे भी आबाद करना है, तो जहन्नम भी है। ये अल्लाह का वादा है, इस पर आप अल्लाह पे मामला छोड़ दें, लेकिन ये होगा। और आखिरी आयतें, छह नबियों के कौमों के हालात पढ़ाकर इतना कुछ सिखाकर अब कहा वह कुल नकुस्सु अलैका मिन अंबाए रसूल, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम रसूलों की खबरों में से हर एक आपको सुना रहे हैं। देखिए ये है अंबाए रसूल जो मैं आपको अक्सर किसी सूरत के आगाज में बताती हूँ। नूह, हूद, सालेह, लूत, शुएब, मूसा के हालात अंबाए रसूल थे। बार बार अल्लाह कहते हैं हम क्यों सुना रहे हैं, मा नुसब्बित बिही फुआदक, ताकि मजबूत रखें हम इसके साथ आपका दिल। इन वाक़यात को सुनकर आप और आपके साथियों के दिलों में इत्मीनान रहे, इस्तकामत में इजाफा हो। मक्का में आप और आपके साथियों पर जो मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई रसूल अपनी कौम की तरफ मबूस हुआ उसने दावत हक पेश की, मुखालफत ऐसे ही हुई और ये बात बाद में भी रहेगी हक वालों के साथ। अम्बिया रसूल और इनके साथी हमेशा ऐसे ही हालात से गुजरे, लेकिन अल्लाह ने मदद की हक की और हक कामयाब हुआ और बातिल चला गया। वजा कफी हाजिल हक, और इसमें आपके पास हक आया है। व मौइज़तुन, और नसीहत, व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, नसीहत और याद दहानी मोमिनों के लिए। क्या पता चला ये हाजी ही क्या है? नंबर एक कुरान और नंबर दो ये ख़ास तौर पे सूरत या ये वाक़यात जो हमने नबियों के पढ़े। तीसरी चीज़, बिल्कुल हक और बातिल को वाज़े कर दिया गया और मोमिनों के लिए इसमें नसीहत और याद दहानी है। क्या पता चला हक आपके दिल पे उतरा लेकिन इससे फ़ायदा मोमिन ले रहे हैं। वकुल लिल्लज़ीन ला युमिनूना, और कह दीजिए इन लोगों से जो ईमान नहीं लाते। ये क्या हुआ, हम तो हमेशा ये पढ़ते रहे आमनू को, यहाँ क्या कहा उनको भी कह दो जो ईमान नहीं लाए। क्या को? इसको कहते हैं तरके ताल्लुक, डांट का अंदाज है। ए मलू अला मकानतिकुम, करते रहो अपनी जगह पर जो तुम कर रहे हो, कर सकते हो कर लो। इन्ना आमिलून, हम तो जो कर रहे हैं वो करेंगे। अल्लाह हमें ये जरूरत दे दे, तो मेरी मुखालफत करो, मेरी दुश्मनी करो, मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ, सजाएं दो, बुरा भला कहो, जो कर सकते हो कर लो, तुम अपनी रविश चलो मैं अपनी पे चलूँगा। वन तज़ीरू, और इंतज़ार करो। इन्ना मुंतज़िरून, हम भी मुंतज़िर हैं। अल्लाह की तरफ से आखिरी फ़ैसला क्या आता है? वलिल्लाहि ग़ैबुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए ग़ैब आसमान और ज़मीन के छुपी हुई चीज़ें। वइलैही युरजउल अम्रु कुल्लु, और कुल का कुल मामला इसी की तरफ लौटाया जाता है। करो क्या? फाबुद हो, बस उसी की इबादत करो। व तवक्कल अलैह, और उसी पर तवक्कुल करें। व मा रब्बु कभी गाफिल, यकीनन आपका रब गाफिल नहीं। अम्मा तामलून, इससे जो तुम लोग कर रहे हो। कैसा खूबसूरत एंड है सूरत का। अल्लाह ताला अपने नबी को ये सारी बातें बताकर हम सबको भी इसी पे लेके आते हैं कि सीधे रहो, जम के रहो, अपनी जगह से ना हटो, पूरे दीन पे अमल करो, मुआशरे के प्रेशर में ना आओ, अपनी मर्जी का दीन इजाद ना करो, कभी कुछ ना करो। जब एक रास्ता अपना लिया तो पूरे यकीन से चलो, कदम जमा के रखो, ढीले कदमों दीन पे मत चलो, पाँव घसीट घसीट के ना चलो, नरम चाल चलो लेकिन मुस्तकिल चलो। ये है इस्तकामत और उसके बाद की चीज़ें। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको दूसरों से बढ़ के इस्तकामत दे। हालात की चक्की में पिसकर हम अपने दीन से पीछे ना हो जाएं। होते ही कोई नहीं है उज़र बहाने सिर्फ उनके। मुझे सूरत तौबा की आयत याद आ गई कि आपके पास आके सिर्फ वही उज़र लेंगे जो उलू तौल हैं। खोल के देख लीजिए 10वें पारे की आखिरी आयतें। ए नबी, सिर्फ वो लोग आएंगे आपके पास ना कहते हुए उज़र पेश करते जो दौलत वाले हैं। गरीब तो चल पड़े थे मुट्ठी भर खजूरें भी लेकर। बहाने सारे ख़त्म हो जाते हैं जब इस्तकामत आती है, और हमें पता नहीं होता। आज से इस्तकामत मांगिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। और दुआ कीजिए कि या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तौअतिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब। और आपको तो इस्तकामत की दुआएं पढ़ाते हैं, अभी कोर्स शुरू हुआ है वहाँ पे, तो पहला पूरा वीक जो टीचर थी वो इस्तकामत की दुआएं पढ़ाती थी। आपको भी पढ़ाई हुई है, दोबारा पढ़ लेते हैं। जी फिर वो लोगों को यकीन आ जाता है ना कि ये नहीं बचेंगे, ये करेंगे ये काम, ये छोड़ेंगे नहीं। कई लोग उसको ज़िद्द कहेंगे, ये भी याद रखें, स्टबननेस कहेंगे, ढीठपना भी कह देंगे कोई, वो उनके अपनी ज़ुबान ही गंदी होगी। याद रखिए कि जब आपको अपने मकसद का यकीन है आप दूसरों को जमाएंगे। मसलन एक बंदा पहाड़ पे खड़ा है, दूसरे को नीचे से लाना पड़ जाता है, कैसे आएगा? खुद पहाड़ पे खड़ा है तो आएगा ना। अब आप सोचिए, ऊपर वाला उसको नीचे नीचे दे रहा है, आपने ऊपर इस रस्सी पकड़ी हुई और आप नीचे वाले को पकड़ रहे हैं, कितना को नीचे जाएंगे आप उसको लेने के लिए, जितना कि आपकी रस्सी ना छूटे। हम अपना दीन छोड़ के दूसरों को दीन पे नहीं ला सकते, इस मिसाल को लिख लें। हम चाहते हैं सबको ऊपर लाएं, तो आप पहले खुद तो खड़े रहें। आप कहते नहीं, इनकी खुशी के लिए चलती हूँ, फिर खाना भी खाऊंगी, कोई बात नहीं, वो नहीं आएंगे। फिर आपके हाथ से इत्तसाम बिल्ला ये वो बात तसीमु भी हबलिल्ला ही जमिया, अल्लाह की रस्सी छूटने ना पाए इतना झुकी है बस रिश्तेदारों के लिए, और किसी की जन्नत के लिए खुद को जहन्नमी ना बनाए।
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون
ये जो बात है कि नेकियां बुराइयों को रोक देती हैं, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, इस पे बहुत खूबसूरत अहादीस मिलती हैं, चंद आपके साथ शेयर करूंगी। हज़रत अबू हुरैरा की एक मारूफ रिवायत है कि अल्लाह के नबी को ये बात कहते हुए सुना, क्या तुम्हारा ख्याल है कि अगर किसी शख्स के घर के दरवाजे के सामने नहर बहती हो और वो उसमें हर रोज़ 5 बार नहाए तो क्या जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगी? तो साहबा ने अर्ज़ किया कि इसके जिस्म पर मैल बाकी नहीं रहेगा। तो आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खूबसूरत तरीके से रग़बत दिलाते थे, और 5 नमाज़ों की मिसाल क्या दी आपने कि जिससे गुनाहों को अल्लाह ताला धो देता है। ये बुखारी की रिवायत है। इसी तरह अबू हुरैरा की रिवायत है कि 5 नमाज़ें और एक जुमे से दूसरा जुमा तक और रमज़ान से रमज़ान तक अपने दरमियान होने वाले गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाते हैं। शर्त क्या है? कबीरा गुनाहों से बचे। ये मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह अबू हुरैरा की एक रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मुसलमान या मोमिन वुज़ू करता है और अपने चेहरे को धोता है तो पानी या पानी के आखिरी कतरे के साथ इसके चेहरे के वो तमाम गुनाह ख़त्म हो जाते हैं जिसने अपनी आंखों से देख कर किए हैं, और जब अपने हाथों को धोता है तो इसके हाथों से पानी और पानी के आखिरी कतरे तक वो तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जिनका इसने अपने हाथों से इर्तकाब किया है। इस तरह जब वो पाँव धोता है तो पानी या पानी के आखिरी कतरे के साथ वो तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जिनकी तरफ वो चल कर गया हो, बिलाखिर वो गुनाहों से पाक और साफ़ हो जाता है। ये मुस्लिम की रिवायत है। फिर एक और बड़ी प्यारी रिवायत है, और मैं इनको सुनते और सुनाते हुए सोचती हूँ कि नबी सल्लम का अंदाज़ कितना दिलों में उतरने वाला अंदाज़ होता था कि आप लोगों को बिल्कुल माइल कर देते थे। हदीस क्या है? अबू ज़र से है रिवायत। एक दफ़ा अल्लाह के नबी सर्दी के मौसम में बाहर निकले, दरख्तों के पत्ते गिर रहे थे। आपने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा तो इसके पत्ते गिरना शुरू हो गए। फरमाया, अबू ज़र, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, एक मुसलमान अल्लाह की रज़ा जोई के लिए जब नमाज़ अदा करता है तो इसके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ गए। मुस्नद अहमद की रिवायत। ऑटम में इस हदीस को याद कीजिएगा, पतझड़ में याद कीजिएगा। इसी तरह मैदान बिन अबी तलहा कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के ग़ुलाम सोबान से मिला। मैंने कहा, मुझे कोई ऐसा काम बताएं जिसके ज़रिए अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, या कहा कि मुझे ऐसा काम बताएं जो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा पसंदीदा हो। वो खामोश हो गया। मैंने इससे फिर पूछा और वो खामोश रहा। फिर मैंने तीसरी मरतबा पूछा तो इसने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह से यही सवाल किया था और आपने फरमाया था, ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करो क्योंकि तुम्हारे एक सजदे के ज़रिए अल्लाह ताला एक दर्जा बुलंद कर देगा और एक गुनाह ख़त्म करेगा। ये मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह मारूफ रिवायत है बुखारी में अबू हुरैरा से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शबे कदर में ईमान के साथ और हसूल सवाब की नियत से इबादत में खड़ा हो इसके तमाम अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और सवाब की नियत से रखे इसके तमाम अगले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। बुखारी की रिवायत अबू हुरैरा से, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फोहश बात हुई ना गुनाह, तो इस दिन की तरह वापस होगा जैसे इसकी माँ ने इसे जना था। तो अल्लाह ताला कितना प्यार करते हैं, और इस आयत की शान नज़ूल में भी आता है इब्ने मसूद से कि एक शख्स ने किसी गैर औरत को बोसा दिया, फिर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना गुनाह बयान किया। इस पर यह आयत उतरी कि तुम नमाज की पाबंदी करो दिन के सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में, बेशक नेकियां मिटा देती हैं बदियों को। ये एक नसीहत है मानने वालों के लिए। इस साहब ने कहा कि क्या ये आयत सिर्फ मेरे लिए, यानी ये काम के नेकियां बदियों को मिटाती हैं? तो आपने फरमाया मेरी उम्मत के हर इंसान के लिए जो इस पर अमल करे। ये बुखारी की रिवायत है। तो ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, इससे पता चलता है कि नसीहत वही कबूल करेगा जिसका दिल जुड़ा होगा और जो वाकई नसीहत लेना चाहेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सबक तो पूरा हो गया है, सूरत भी पूरी हो गई है, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को जमा करें तो जिस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है वो यही है कि हम अपने आप को जमा दें, और नमाज से इस्तकामत में मदद मिलेगी तो बाकी ज़िंदगी में भी होगी। और आज जो नमाज में खड़ा हो जाएगा वो इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा और उसका दिल मज़बूत होगा, और ये नमाज बोझ ना बने। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा दिल नमाजों में लगा दे। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात। और याद रखिए कि सब्र भी ज़रिए इस्तकामत होता है, क्योंकि सब्र बेबसी का नाम नहीं है और ना ताकत और कुव्वत को देकर हक़ से पीछे होने का नाम है। सब्र एक ऐसी कुव्वत है जो इंसान को किसी जालिम के सामने झुकने ही नहीं देती, किसी तख्त के सामने सजदा रेस नहीं होने देती, और इंसान हक और सदाकत का झंडा उठाकर उठता है। और इस रास्ते में आने वाली मुश्किलात इसके नज़दीक सामान्य सफ़र से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। वो कट सकता लेकिन झुकना नहीं जानता। जब एक बंदा नमाज से बंदगी और अज़मत का राज पा लेता है और सब्र से इस्तकामत का दर्स लेकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करता है तो फिर अल्लाह इसके साथ होता है, क्योंकि नमाज और सब्र से जो किरदार वजूद में आता है इसे सिर्फ नेकी नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो बरतर नेकी जिसके आगे नेकी का कोई मुकाम नहीं, और इसी को मुकाम एहसान कहते हैं। और अल्लाह मोहसिनों का अजर ज़ाया नहीं करता, करता तो वो किसी का भी ज़ाया नहीं, लेकिन ज़मानत दी है तो मोहसिनों को दी है। अल्लाह ताला मुझे आपको मोहसिन बना दे। और यहाँ देखिए उलू बकिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और बकिया कहते हैं अक्ल और दानिश को, खैर और इसलाह के लिए भी लफ्ज़ आता है। किसी कौम के अक्लमंद शख्स के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और माँ उतरीफूफ ही इतराफ़ माल दौलत की फरावानी को कहते हैं, लेकिन ऐसा माल जो बंदे को फसाद में डाल दे, अतरफहुल माल, मालो उस बाप ने इसको तुगयान और फसाद में मुबतला कर दिया। तो ऐसा माल जिससे बंदा अल्लाह ही की बात ना माने, अल्लाह ताला उससे मुझे आपको बचा कर रखे, और अल्लाह ताला माल के शर से बचाए, इसको खैर के रास्तों में लगाए, और अल्लाह ताला मुझे आपको इसलाह और खैर के कामों में लगाए रखे। क्योंकि फितरत अफराद से इगमास भी कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। इनफरादी ज़िंदगी में गलतियाँ हो जाएं अल्लाह माफ़ करता है, लेकिन जब ये एक इज्तमाई मिजाज बन जाए वो दुरुस्त नहीं। और यहाँ जो जुल्म की बात है वो भी असल में इज्तमाई बिगाड़ है, और अल्लाह करे कि हमारी इसलाह शुरू हो जाए, क्योंकि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा इज्तमाई तौर पर बिगाड़ बनी हुई है अल्लाह की ज़ात से लेकर बंदों के मामलात और अल्लाह की बातों को ना मानने पर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।